बुद्धि की उपलब्धियों के लिए, सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, बधाइयां स्वीकार करें। ये मास मामा का मास है। जून महीना आते ही मामा की यादें बढ़ने लगती हैं। आज की क्लास में हम सब मामा की उन विशेषताओं को अपने जीवन की धारणाओं में लाएं। तपस्या का अर्थ है संकल्पबद्ध होना, अपने को दृढ़ता की बेल्ट से बांध लें और तैयार रहें। मन में एक जुनून हो, एक जज्बा हो, एक लगन हो। मामा के जीवन की विशेषताओं से उनको हम अपने जीवन में लाएंगे। मामा की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, मामा में दृढ़ता की शक्ति बहुत थी, दृढ़ता की शक्ति। मामा से किसी ने पूछा तो मामा ने यही कहा, जब पूछा कि मामा आप मामा बन गई, ऐसी कोई विशेषता बताइए जो उससे बन गई, तो मामा मुस्कुरा के कहने लगी कि ऐसा कोई एक विशेषता नहीं होती है जिससे कोई व्यक्ति आगे बढ़ जाए, उसमें कई फैक्टर्स काम करते हैं। लेकिन मैंने ध्यान दिया कि जिस संकल्प को किया कि अब ये गलती हुई या कोई बात हुई तो अब उसको दोबारा नहीं करना है, और यही मामा के पुरुषार्थ की तीव्रता का आधार बन गया। दृढ़ निश्चय, दृढ़ता का बल, ठान लिया। नहीं तो क्या करते हैं हम, अपने को पुरुषार्थी हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, ऐसे कह करके अपने आप को हम सीमित कर लेते हैं, अपने पुरुषार्थ को और टेक देते हैं और उसको और टिका देते हैं। मतलब ठीक है, हो जाएगा, अपने आप को आथत देते, ढांढस देते हैं, तसल्ली, लेकिन ये भी आलस्य और अलबेलापन है। इसलिए निश्चय दृढ़ता की बेल्ट से अपने आप को दृढ़ प्रतिज्ञ करें। जो भी आपको सुनाई पड़ रहा है, जो भी अभी आपने क्लासेस सुने, सुनते तो हम सब हैं और यहां तो सुनने के लिए आए, लेकिन इनको एकांत में बैठकर क्या हमने सुना, जब तक उसको आप रिवाइज नहीं करेंगे, जब तक उसके ऊपर एकांत में बैठकर दृढ़ता के साथ मुझे क्या करना है, वो तो बहुत ढेर सारी बातें सुनाई, मेरे लिए क्या है। और मामा यही कहती थी, मामा मुरली सुनने की इतनी ज्यादा दिलचस्पी लेती थी, बार बार मुरली को पढ़ना, बार बार मुरली। किसी ने कहा कि मामा आप तो विद्या की देवी हैं, ज्ञान की देवी सरस्वती हैं, फिर आपको इतना मुरली पढ़ने को क्या जरूरत है। तो मामा ने यही कहा कि जब भी मैं जितनी बार अपने मीठे बाबा की मुरली पढ़ती हूं तो मेरा बाबा, मीठा बाबा मेरे सामने आ जाता है, सामने आ जाता है। हम सबको भी चाहिए कि इस चीज को बार बार दोहराएं। मुरली भी जब सुनते हैं, सुनाते हैं तो बार बार, एक बहन को मैंने देखा, बहुत अच्छी उसकी खूबी थी, वो जब भी मुरली पढ़ती थी तो मुरली के एक सेंटेंस पूरा होता था तो फिर कहती थी बाबा कहते हैं, फिर मुरली को सुनाए, फिर बाबा कहते हैं, फिर सुनाए, फिर बाबा कहते हैं। पूरी मुरली में इतनी बार बाबा आ जाता था कि सुनने वाले का भी ध्यान होता था कि हाँ ये कितना याद किया है। मैं सोचा कि ये कैसे हो गया, लेकिन ये ऐसे नहीं होता है, जब तक आप बाबा को याद करेंगे नहीं तब तक ये आदत बनती नहीं। और ये आदत बनना बहुत जरूरी है, अच्छा है, क्योंकि बाबा भी कहते हैं कि जब प्रदर्शनी समझाओ तो 1000 बार बाबा बाबा बोलो, जब बात करो तो बीच में बाबा बाबा बोलो, जब कोई जिज्ञासु आए आप समझा ना सकें हैं तो ये भी बता सकते हो, अभी बाबा ने इसे बारे में बताया नहीं है, या फिर बताएं कि हमारी बड़ी बहन से मैं पूछूंगा, पूछ करके फिर बताऊंगा, लेकिन नम्रता के साथ। इसलिए हमको अपनी दिनचर्या में बहुत आवश्यक ध्यान देना है ममा की इन विशेषताओं को। यहां से जाने के बाद मैं आपको एक कुछ युक्तियां बता रहा हूं, कुछ टिप्स दे रहा हूं, वो आपको बहुत काम में आएंगे। कैसे हमारी ये भट्टी रेगुलर होती जाए, निरंतर होती जाए, उसके लिए हर रोज 4 प्रकार की तपस्या का कुछ न कुछ समय जरूर देना है। पहली तपस्या है जो बहुत जरूरी है, वो है आत्म अभिमानी बनने की तपस्या। इसको ही अशरीरी बनने की भी तपस्या कह लीजिए, शरीर से अलग होने की, इससे अलग हो फिर शरीर में आए, ये अशरीरी बनने की, और आत्मा यहां बैठ जाए, इसको ही स्वराज अधिकारी बनना भी कहते हैं, स्वराज अधिकारी बन जाए, सब कोई बैठ जाए ऐसे, इसी स्थिति में बैठे, ये स्थिति बहुत अच्छी है, ऐसे बैठे, सामने देखें, आंखों को कम करें, अनुभव के नेत्र से देखें, अपने मस्तक सिंहासन पर विराजमान हो जाएं और फील करें कि मैं मस्तक सिंहासन पर, हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाए। यहां पर रखें उंगली, फील करें ये मस्तिष्क जो ब्रेन है, यहां पर दरबार लगा है, और मैं अपने मंत्री से, मन मंत्री से मंत्रणा करता हूं, करें मंत्रणा अपने मन मंत्री से, समाचार पूछें सजग संतरी से, बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजे, सुखी जनता सारी, सुसंस्कारों की सेना सजग है, जो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाए। अपना हाथ रखें दाहिना हाथ सिर पर, फील करें कि बाबा के वरदहस्त कृपा का मैं पात्र हूं, परम प्रेम की वृष्टि हो रही है, उसकी वरदानी दृष्टि मेरी सृष्टि परिवर्तित कर रही है, खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, जो खोया था स्वराज फिर से दिलाया, उपकार उसने किए हम पे इतने कि आभार धरती गगन मिलके गाएं, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाए। नीचे करें, ये प्रैक्टिस, ये अभ्यास स्वराज अधिकारी बनकर के, जैसे ब्रह्मा बाबा कहा करते थे, मन मंत्री, बच्चू बादशाह, पीरू वजीर, वृद्धा बाबा, डायरिया ऐसे होती थी ज्ञान मार्ग से पहले ही। फिर तो बाबा ज्ञान में मैं आत्मा, फलानी आत्मा, ढेर सारे दीवालों पे लिखना, डायरियों में लिखना, बाबा की कितनी बड़ी एक्सरसाइज थी। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, आत्मचिंतन की प्रयोगशाला में, आत्मपरिवर्तन की प्रयोगशाला में जब बैठे तो आत्मचिंतन करें, अपने आत्मा को सामने यहां देखें, मैं आत्मा यहां बैठा हूं, स्वयं के विषय में चिंतन करें। सारे दिन हमारा चिंतन बहिर्मुखी होता है, देह और देह की दुनिया के संबंध में होता है, बहुत कम होता है। जिनको निरंतर देही अभिमानी बनना है, आत्मचिंतक बनना है, स्वचिंतक बनना है, शुभ चिंतक बनना है, आत्म विश्लेषण करना है, आत्म अन्वेषण करना है, आत्मदर्शन करना, आत्मदर्शी, जो सबको आत्मा देखने की प्रैक्टिस में लगे हैं, उनको अपनी आत्मा को देखने का बहुत अभ्यास चाहिए। ऐसे देखें किसी को ही आत्मा देखें, ऐसे नहीं होता है, कितना भी देख ले बुद्धि वहां तक काम नहीं करती। इसलिए बहुत जरूरी है कि आत्मचिंतन की प्रयोगशाला में बैठें, आत्मचिंतन करें, आत्म अवगाहन करें, अपने में उतारें, फील करें, फिर एक बार बैठ जाएं, अंदर में देखें, आज मेरे बाबा ने मुझे क्या कहा। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अतींद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदैव इस स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं। बाप की याद भूली तो सुख गुम हो जाएगा। फिर बाबा आप कहते हैं, प्रश्न में कहते हैं कि बाप से मिलने की अस्थाई खुशी किन बच्चों के रही। कितनी अच्छी बात बाबा आपने बताई। बाबा आप कहते हैं कि जो बच्चे, जिन बच्चों के सब संबंध अपने एक बाप से जोड़े हैं, और जो एक बाप को ही याद करने की मेहनत करते हैं, जो देहधारियों को याद नहीं करते हैं, जो देहधारियों को याद नहीं करते हैं, उनको स्थायी खुशी रहती है, स्थायी खुशी उनको रहती है, और स्थायी खुशी उनको रहती है जो अपने सब संबंध बाप से जोड़ कर रखें। प्यारे बाबा, आप धारणा सार में भी यही कहते हैं, कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना, छुई मुई नहीं बनना। और बाबा आप कहते हैं कि बेहद के बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है, बादशाही मिल रही। बाबा आप ये भी कहते हैं कि अगर ईश्वरीय बचपन भूला तो ईश्वरीय बचपन को भूलकर मुरझाना नहीं। प्यारे बाबा, आप ये कहते हैं कि तुम बच्चों को निरंतर याद रखने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। बाबा आप ये भी कहते हैं कि इस पुराने दुनिया को देखते हुए भी इसको देखना नहीं, इन आंखों से इसको देखना ही नहीं, तुम्हें तो बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। प्यारे बाबा, आप जो बातें कहते हैं वो हमारे दिल से लगती है। कितना आपका धन्यवाद करें, कितना बाबा आपका धन्यवाद करें। बाबा, आप अपने से जोड़कर हमारी तार को कितना महान बना रहे हैं। ईश्वरीय ज्ञान के रत्नों को हमारे पर उड़ेल करके आप क्या से क्या बना देते हैं। आप हमको शक्ति स्वरूप बना रहे हैं, वरदानों से झोली भर रहे हैं, वरदानों से झोली भर देते हैं। बाबा आप ये भी कहते हैं, कर्मयोगी वो है जो कर्म रूपी कल वृक्ष की डाली पर जो बैठकर कर्म के फल की इच्छा से मुक्त रहता है, कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहे, वो कर्मयोगी है। आपने हमको वरदानों से, ज्ञान रत्नों से इतना भर दिया है कि हम तो बाबा आपके प्यार में पल रहे हैं, वरदानों में पल रहे हैं, स्नेह में सने। वाह बाबा वाह, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। इस तरह से बाबा के जो बोले हुए वचन हैं, उनको बार बार स्मरण करें। जितनी बार स्मरण करेंगे उतना ही आनंद से आप भर जाएंगे। इसी तरह से एक प्रयोगशाला में आप आत्म परिवर्तन की प्रयोगशाला में बैठे, इसके लिए दिनचर्या में आधा घंटा हर एक को निकालना है। निकाल सकते हैं सब? सब निकाल सकते हैं? बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे ईश्वरीय ज्ञान का ये पहला ही पाठ है। जब तक आप आत्मविमानी नहीं बनते हैं तब तक आप बाबा को भी याद नहीं कर सकते, और बाबा की याद भूली तो क्या हो गया, जो अतीन्द्रिय सुख मिलने वाला है वो सब गुम हो जाएगा, वो रहेगा ही नहीं। इसलिए आत्मविमानी बनने की प्रयोगशाला जरूर करें। कभी कभी ऐसा मौका मिल जाए तो दिन की दिनचर्या में पूरा दिन ही लगा दें। मुझे भी याद है, मैं अपना वो अनुभव सुनाता हूं, लगभग 86 की बात है, ओम शांति भवन नया नया तो था ही, किचन भोजन बनाते थे। दादी को कहा, भोली दादी को, कि दादी मुझे भट्टी करना है। तो दादी ने कहा, अच्छा भट्टी करना है, कहाँ करना है, कहीं जाना है सब सोचा होगा। मैंने कहा, कहीं नहीं दादी, ओम शांति भवन में। अच्छा तो ठीक है जाओ। तो दादी ने सब काम संभाल लिया। मैं गया वहां पर, पूरा दिन भर एक ही तपस्या में। मैं सोचा कि रोज रोज मैं आत्मा हूं कर रहा हूं, कुछ मिलता ही नहीं, कुछ अनुभव नहीं होता है, पता नहीं क्या होता है। पूरा दिन भर लगा, यकीन मानिए मैंने दिन भर मेहनत की, बड़ी मेहनत किया, कुछ हुआ ही नहीं खास, कुछ खास नहीं हुआ। मेरे मन में आया कि कुछ और करना चाहिए, एक दिन और गया और छुट्टी ले ली, लेकिन दूसरे दिन का जो नशा था गजब का था, लेकिन लगा कि अभी भी पूरा नहीं हुआ है, एक दिन की और छुट्टी ले लिया। तीन दिन में ऐसा लगा कि मैं कहीं अव्यक्त होकर के तो नहीं आया हूं। ऐसे देखता हूं 2:30 बजे के समय ओम शांति भवन में कॉन्फ्रेंस हॉल के साइड से गुजर रहे थे, ऑफिस के सामने से बाबा के कमरे के लिए, तो देखता हूं 2:30 बजे का समय, कब मैं उठा, कब फ्रेश हुआ, कब आ गया, ये कहीं ऐसा तो नहीं मैं शरीर छोड़कर अव्यक्त होकर के तो मैं आया हूं, कहीं ऐसा तो नहीं। ऐसे ऐसे देखता हूं तो लगता है नहीं नहीं ये तो स्थूल शरीर है, हड्डी मांस वाला है, कुछ याद नहीं। लेकिन वो जो 3 दिन की तपस्या का परिणाम रहा, आज मुझे ऐसा लगता है कि हम तो खेल खेल रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे। जब तक कोई एक विषय लेकर उसके पीछे उसकी गहराई में दृढ़ता की बेल्ट से लगन लगा के जिद पकड़ के ना लगो, तब तक होता नहीं। दादी जानकी कहा करती थी कि हम सब कभी कोई संस्कार ऐसा कड़ा हो ऐसा तो रहा नहीं, लेकिन उस पर 3-3 मास 6-6 मास जब तक वो खत्म ना हो जाए छोड़ते नहीं। हमारे पास बहुत है। मैं तो आज देख रहा था एक भूलने का संस्कार ऐसा है कि कोई भक्ति मान मन में भूलने का होता है, यहां पर कोई सामान रख दिया, कहां रख दिया, वहां गए, कितना टाइम वेस्ट जाता है, कितना अनमोल संगम युग। और छोटे छोटे हमारे जो संस्कार हैं, निश्चिंतता हो, भाई गुम हो गई है, अगर हमारी चीज है हमको मिल जाएगी, थोड़ा केयर करना जरूरी है। लेकिन गुम हो गई, अब उसके लिए जब ढूंढें, प्रयास करें, मिल जाए तो अच्छा है, ना मिल जाए तो उसके पीछे व्यर्थ संकल्प चलाने से क्या फायदा, क्योंकि जितना संकल्प चलाएंगे उतना है। हाँ, अपने संकल्पों को आदेश दो, संकल्प जाओ, कहां कहां गए, कहां पर क्या लेकर गए, क्या छोड़ा, कहां छोड़ा, तो धीरे धीरे करके संकल्प आपको लेकर के जाएं, बजाय इसके कि आप संकल्पों को लेकर के जाएं। योग में बैठे हैं, आपको घड़ी घड़ी कोई बात याद आ रही है, तो अपने आप को कहां जा रहे हो, बैठो, एक छोटा बच्चा है, मन को बना लो, बैठ बैठ, आओ बैठो, बोलो, देखो सामने, बाबा को देखो, बाबा को देखो, देखो देखो बाबा को देखो, हाँ देखो, अच्छा देखता है, फिर इधर उधर करता है, कहां जाने का मन करता है, घर जाने का मन करता है, चलो तुमको ले चलता, घर लेकर गए, घुमाया दिखाया, जो करना था करके, चलो ठीक है चले वापस आओ। इस तरह से मास्टर ऑफ माइंड, सेल्फ की मास्टरी होनी चाहिए, इसको स्वराज अधिकारी बनना कहते हैं। इस तरह से मन को ले जा करके उसको घुमा करके फिर ले आओ, वो आपको लेकर घुमाए नहीं। आज नीचे आशा दीदी मुरली सुना रही थी, बोला अतीन्द्रिय सुख क्या है, अतीन्द्रिय सुख हम ब्राह्मणों को ही मिलता है, संगम युग में ही मिलना है, लेकिन हमारे ब्राह्मणों को उनको मिलना है जो इसके लिए प्रयासरत है। आज बाबा कहते हैं कोई भी देहधारी की याद आई तो सुख नहीं मिल सकता है, और यहां पर हमको ब्राह्मणों को, सब सब ब्राह्मण जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको ये समझ नहीं आता है कि ये सुख हमको कौन सा मिल रहा है। खाने पीने का, ब्रह्मा भोजन का सुख, वो तो परम सुख है, वो संगम युग में कौन छोड़ता है ना, मिलता है ना। तो जीभ का स्वाद, वो हमको 56 प्रकार के व्यंजन मिल रहे हैं, राजभोग ब्रह्मा भोज मिल रहा है, भोग मिल रहा है, उसमें भी वही लगे जो एक सूखी रोटी में लगे। इसलिए बाबा आज कहते हैं कि बच्चे तुमको कभी भी किसी भी बात में छुई मुई नहीं बनना है, टच मी नॉट, शर्म बूटी लाजवंती वो नहीं बनना है। हम ब्राह्मण इस बात में भी बड़े नाजुक हैं। नाजुक कैसे हैं? ज्ञान तो बहुत है, इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन बड़ी सेंसिटिव नेचर बनना वो बड़ा नुकसानदेह होता है। किसी ने कुछ कह दिया, चेहरा लटक गया हमारा, किसी ने महिमा कर दी, हम बहुत ऊपर चले गए, और किसी ने थोड़ा कुछ कह दिया तो नीचे जमीन पर भी दिखाई नहीं पड़ने। ये जो स्थिति है इससे बचना होगा। जय पराजय सुख दुख संसार सागर की लहर है, साथी है भगवान तेरा, तुझको फिर कैसी फिक्र है, हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना, राजयोगी बन किसी को फूलों जैसा मुस्कुराना। निरंतर हर्षित रहने के लिए बाबा कितनी बात कह रहे हैं, सहनशील बनो। अगर सहनशीलता नहीं है, थोड़ी गर्मी हुई ओहो पिघल गए। मुझे तो कभी कभी ऐसे बैठ गया, पंखा चलाया ही नहीं, किसी बात में बिजी हो गया, बाद में कोई कहा अरे इतनी गर्मी हो रही आप बैठे, अरे हाँ गर्मी तो मुझे भी लग रही, तब मुझे इतनी देर के बाद जब उसने याद दिलाया तो पता लगा कि मैं बैठा हूं गर्मी बैठा हूं, हम पत्थर तो नहीं है, लेकिन इतना तो हम नाजुक न बने कि बाबा मेरे से होता नहीं है, यहां गर्मी बहुत है, यहां ठंडी बहुत है, थोड़ी गर्मी हुई पिघल गए, ठंडी हुई सिकुड़ गए, ये हमारी कमजोरी बहुत बड़ा विघ्न है हमारे पुरुषार्थ में। सहनशील बनना होगा और साथ में सरल नेचर बने। हमारा नेचर ही सरल हो, कोई कुछ कहे तो थोड़ा सा धीरज देकर सुने, और बिना ईश्वरीय परिवार में, जिसे आप सब तो हैं, आप सब घरों में हैं, अलग रहते हैं, हम सब तो मधुबन में रहते हैं, मधुबन में भी हम सबके बीच में रहते हैं, हमारी परीक्षा कहाँ होगी? हमारी परीक्षा यहाँ है, अपने साथियों में, संस्कारों में। ऐसा दूर से लगता है भाई स्वर्गाश्रम तो है, नो डाउट, लेकिन सबके साथ में चलना है, सबके बीच में रह करके ही देवता बनना है। सबसे ज्यादा सर्टिफिकेट अपने पड़ोसियों से लेना है, और पड़ोसियों से सर्टिफिकेट मिलना बहुत आसान है। आसान है, बोलो भाई, हाथ हटाओ, सब मुस्कुरा रहे हैं, ये आसान है। हम क्या है, हमारे पड़ोसी से पूछ लो, वो सही सही बताएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि सहिष्णु बनो, सहनशील बनो। सहन इसलिए नहीं करना है, बस सहन करना है। सहनशील इसलिए बनो कि ये बाबा की श्रीमत है, जितना सहन करेंगे उतना ही सहनशाह बनेंगे। जितने हम सहनशील बनेंगे, पत्थर को जितना ही हथौड़ी लगता है, धीरे धीरे पत्थर वो पूजनीय बन जाता है। सहन करना होगा। एक कविता है, खेल जमाने के यूं ही चलते रहेंगे, खेल जमाने के यूं ही चलते रहेंगे, कभी तू ख्याल न कर, और कहने वाले कुछ न कुछ कहते रहेंगे, कभी परवाह न कर, कभी तू आह न कर, कभी परवाह न कर। नेक राह पर चलते जो उन्हें कष्ट उठाने पड़ते हैं, जो नेक राह पर चलते हैं उन्हें कष्ट उठाने पड़ते हैं, पर सेवा करने वाले, पर सेवा करने वाले इतिहास नया नित रचते हैं। फूल और कांटे यूं ही मिलते रहेंगे, कभी तू आह न कर। फूल भी मिलेंगे, कांटे भी मिलेंगे, लेकिन कभी आह न कर, और कहने वाले कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, कभी परवाह न कर, कभी तू आह न कर, कभी परवाह न कर। सुखी जो रूखी सूखी खाते और प्रभु गुण गाते, चांद सितारे चाहने वाले धूल और मिट्टी लाते। इतनी दूर गए चंद्रमा पर, भैया वहां दूर तक इतनी दूर गए क्या लाए? कहते मिट्टी लेकर आ गए। हैं? तो सुखी जो रूखी सूखी खाते और प्रभु गुण गाते हैं, चांद सितारे चाहने वाले धूल और मिट्टी पाते हैं, चांद सितारे यूं चमकते रहेंगे, तू इनकी चाह न कर, इनकी चाह न करो। लोग दुनिया में भी आपसे बोलते हैं ना, तू मेरी बन जाओ, तो मैं तेरे लिए चांद लाऊंगा, मैं सितारे लाऊंगा, बड़े वादे करते हैं आपस में, हैं? जबकि पल भर का भरोसा व्यक्ति का नहीं होता है। तो चांद तारे यूं चमकते रहेंगे, तू इनकी चाह न कर, और कहने वाले कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, कभी परवाह न कर, कभी परवाह न कर। और आखिरी लाइन बहुत अच्छी है, देख किसी के महल दुमहले, प्यारे दुखी नहीं होना। हम आपस में साथ में रहते, मैं कभी कभी देखता हूं भोजन पर बैठे हैं, एक भाई को मैं ऐसे देख रहा हूं, मैं भोजन पर लेकर बैठा बाबा को याद कर रहा हूं, देखता हूं भाई आया एक सामने, वो हमारी थाली में, उनकी थाली में, उनके चार पांच लोग, जब तक वो पास में गुजर नहीं गया, सबकी थाली में वो देखता ही जा रहा नजदीक से, कि इनकी थाली में क्या है, उनकी थाली में क्या है, उनकी थाली में क्या है, और किसी के थाली में पता नहीं नमक उसमें है, मिर्ची मसाला है, कुछ स्वादिष्ट है कि नहीं, लेकिन लाल पीला रखा है, उबली सब्जी रखी है, उसको ये नहीं पता है, लेकिन मन गए उसकी थाली में ये है, मुझे तो मिला नहीं है, पता नहीं कहां मिल रहा है, ये माल पानी कहां मिल रहा है। तो हमारी आंखें, हमारा हमारी जीभ कितनी चलायमान होती है, कितनी चलायमान होती। तो देख किसी के महल दुमहले, प्यारे दुखी नहीं होना, और जो भी चमकता है दुनिया में, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, जो चमकता है दुनिया में वो सब सोना नहीं होता है। देख किसी के महल दुमहले, प्यारे दुखी नहीं होना, जो भी चमकता है दुनिया में वो सब तो नहीं सोना, बिन मांगे मोती तुझे मिलते रहेंगे, किसी से डाह न कर, किसी से ईर्ष्या न कर, और कहने वाले कुछ न कुछ कहते रहेंगे, कभी परवाह न कर, कभी तू आह न कर, कभी किसी की चाह न कर। इसलिए हमारे पुरुषार्थ में धीरे धीरे करके स्थित प्रज्ञ अवस्था होनी चाहिए, एक रस अवस्था। एक रस अवस्था का बीज है स्थित प्रज्ञता, और स्थित प्रज्ञता का आधार है संतुष्टता। संतुष्टता का आधार है त्याग, और त्याग का आधार है बेहद का वैराग्य। बिना बेहद के वैराग्य के त्याग धोखा है। आपने नौकरी छोड़ दी, आपने ये काम छोड़ दिया, विनाश होने वाला, कौन छोड़ो, छोड़ो क्या करना है, देखा विनाश हुआ ही नहीं, बाद में पछताए तो बड़ा मुश्किल हो गया, मैंने तो सब चीज छोड़ दिया, सोचा विनाश होने वाला है। अरे भाई, कई कई ऐसे लोग होते हैं, यहां पर भी एक बार बाबा का ऐसे इशारा मिला, कुछ बस भर के यहां आ गए, उनसे पूछा गया भैया क्यों आ गए, कहा बाबा ने कहा विनाश होने वाला है। तो ये त्याग, अगर मन में बेहद का वैराग्य नहीं है, त्याग किया तो धोखा हो गया। याद में बैठे हैं, भट्टी में बैठे हैं, मोबाइल भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन मन अभी भी भटक रहा है, कहीं न कहीं कोई न कोई सूरत, कोई न कोई मूरत हमारी आंखों के सामने घूम रहा है। वो ऐसे जाता नहीं है, बाहर के नाम रूप की बीमारी होती है, कोई देहधारी की याद होती है। इसलिए बाबा मुरली में बार बार इतना क्यों कहता है, जब किसी से किसी का दुनियावी जैसे इश्क हो जाता है, तो एक दूसरे के लिए तुम अगर मिल जाओ तो दुनिया छोड़ देंगे हम, सारे कस्में खाते हैं, लेकिन वो जो त्याग होना चाहिए, ये वैराग्य होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तो क्या करेंगे उसके लिए, उसके लिए अभ्यास करें स्थित प्रज्ञ अवस्था, बेहद का वैराग्य। दिन भर में 10 बार अपने सब सामानों को देखें, दर्पण के सामने खड़े हो जाएं जानबूझ के, और स्वयं को देखें कि मैं किसको देख रहा हूं, मैं आत्मा को देख रहा हूं या शरीर को देख रहा हूं। मैं आत्मा यहां बैठी हूं, ये शरीर तो जलने वाला है, खत्म होने वाला है, मिटने वाला है, मैं अपने शरीर को देखता। देखो शरीर से, आंख बंद करके देखें, मैं शरीर से निकल गया, फिर आंख खोले आ जाए, फिर ऐसे कर। कभी मौका मिले तो छोटे छोटे टिप्स हैं, यहां बैठे आत्मा में बैठा हूं, शरीर खड़ा है, इतने में यहां से उतर रहा हूं, पूरे शरीर में मैं आ रहा हूं, यहां आया, अब फील करें कि शरीर ऊपर और नीचे आया, और नीचे आया, यहां आया, यहां आया, नीचे पांव के अंगूठे तक गया, अब अंगूठे पर आकर देखें शरीर खड़ा है, ऊपर मेरा शरीर खड़ा, फिर नीचे से ऊपर आए, फिर आके आप बैठ जाए मस्तक पे बैठे, फिर उतरे दूसरे पांव में अंगूठे तक जाए, फिर धीरे धीरे जाए, धीरे धीरे करके अनुभव करें, फील करें मैं शरीर में यहां आया हूं, यहां आ गया, फिर यहां बैठे। ये अभ्यास करें, ये अंतर यात्रा, शरीर के अंदर ये यात्रा करें। ऐसे ही अशरीर बनने के लिए अभ्यास कर सकते हैं, शरीर को भूलाए नहीं भूलते हैं, मैं बिंदु हूं, बिंदु हूं, मैं बिंदु याद करता हूं, लेकिन लगता है बिंदु है, पूरा शरीर दिखाई पड़ता है। उसके लिए क्या करें, अपने शरीर के चारों ओर मैं खड़ा हूं, और एक जैसे रूप, एक रस्सी, एक जैसे रस्सी से एक पाइप की तरह, जैसे उसको छोटा कर रहा हूं, पूरे शरीर को छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, इतना छोटा करो कि जैसे कि मैं छोटा होते 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 बिंदु में आ गया, फिर बढ़ाएं अपने आप को, फिर बढ़ाएं, फिर छोटा करें जैसे बिंदु बन जाए, फिर विराट, बिंदु विराट। ये प्रैक्टिस करें, ये प्रैक्टिस करें, जैसे ये छत है, छत से मैं ऊपर से देख रहा हूं, यहां पर शरीर है मेरा, सूक्ष्म शरीर, और मैं ऊपर से देख रहा हूं तो ये भाग दिखाई पड़ रहा है, सिर दिखाई पड़ रहा है, माइक दिखाई पड़ रहा है, पूरा हॉल दिखाई पड़ रहा है। फिर उसके ऊपर जाता हूं तो ज्यों ज्यों ऊपर जाता हूं तो पहाड़ आसपास ये सब दिखाई पड़ता है, नकील एक झील जो पूरा आबू और दूर 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 तक दिखाई पड़ता है, और ज्यों ज्यों ऊपर जा रहा हूं और ऊपर दिखाई पड़ रहा है, और ऊपर जा रहा हूं, इस तरह से अपनी सूक्ष्मतन की यात्रा करें। वहां पर सूक्ष्म शरीर जिसे बाबा आह्वान कर रहे हैं बैठ जाए, बाबा का आह्वान बाबा कर रहे हैं और आप भी बाबा की बाहों में चले गए। फिर बाबा कहता है बच्चे आओ, मैं कब से इंतजार कर रहा हूं, यहां वतन में बैठो, अब मेरा सारा काम आप करो, मुझे करते हुए कितने वर्ष बीत गए, बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ, मैं पास में तुम्हारे आता रहूंगा कब तक, इंतजार मैं वतन में करता रहूंगा कब तक, अब देर न लगाओ। मैं कहता हूं बाबा आप देर क्या लगाएं, अब देर न लगाओ, आओ वतन सजाओ। मैंने कहा सारी दादियां तो बाबा आपने बुला लिया, सजा तो लिया, यहां भी कुछ तो रहना चाहिए, है हम हमेशा नहीं है। तो कहते हैं तन में पुराने ठहरे हैं हम, बाबा तेरे ही खातिर, और जग में पुराने ठहरे हैं हम जग परिवर्तन के खातिर। बाबा हम यहां बैठे, वो दिन आए वो घड़ी आए हम हंसते गाते आपके साथ जाएं, लेकिन इसके पहले हम आप जैसा बन जाएं, इनके गुणगान न करें गुणवान भी बने। तो इस तरह से आत्मविमानी बनने की तपस्या करना बहुत जरूरी है। दूसरी तपस्या है निरंतर याद की तपस्या, निरंतर याद की तपस्या। निरंतर याद की तपस्या तभी सफल हो सकती है जितना जितना आप बाबा मैं होते जाएं। बाबा मैं का मतलब है बाबा की मुरली को जितनी बार पढ़ें, जितना मंथन कर सकें, जितनी बार देखें सुने सुबह से लेकर शाम तक, उसका अवगाहन करें, उसके ऊपर वार्ता करें, उसके ऊपर कविता लिखें, उसके ऊपर गीत लिखें, उससे ऊपर बातचीत करें, उसकी एक लाइन पढ़ें, एक लाइन पढ़ के थोड़ा रुक जाए। आज मैं ऐसे जब पढ़ता तो एक लाइन पढ़ के बैठ, बाबा आप कहते हैं कभी भी किसी बात में छुई मुई न बनो, छुई मुई न बने किसी भी बात में, कितनी बड़ी बात है, किस किस बात में है। जब भोजन ऐसा होता है आंखें काम है देखा है, हमारी आंखों को अच्छा ना मिले तो नाराज, जैसे मुख को अगर ना कुछ मिले ये भी है, कभी कभी जो ये बोलने का है, जिनको बोलने की आदत है, माइक मिलने की आदत है, वहां बैठे तो वहां तो बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन नेचुरल वो हमारे जीवन में आ जाए, उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी वाणी पर जितने हम बात करते हैं उतना अंतर्मुखी बने। हम सबको भी यहां दिन भर में तीन तीन बार तीन तीन जगह, जैसे आज अभी ज्ञान सरोवर से आए, सवेरे शांतिवन से आए, वहां भी प्रोग्राम था, कल तीन तीन जगह गीत था, तो एक पूरा दिन भर में कितना रिहर्सल करना पड़ता है, कितना बोलना पड़ता है, कितना आवाज में जाते हैं, उतना ही लक्ष्य होता है अब चुप भी रहना है, अंतर्मुखी बनना है, गहराई में भी जाना है, क्योंकि लिखना भी होता है, जब तक गहराई में न जाए तो वो चीज आती नहीं। अभी ज्ञान सरोवर में महिला विंग का कॉन्फ्रेंस है, उनका टॉपिक है, लिखा है उसमें कि स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट थ्रू वेमेन्स एम्पावरमेंट थ्रू संस्कार परिवर्तन। अब संस्कार परिवर्तन कैसे होगा, क्या उनको देना है, क्या लिखना है, सब सुनते हैं, स्टेज वाले भी पढ़ते हैं, तो उसके लिए गहराई में जाना है, तब वो चीज बनती। तो बिना अंतर्मुखी बने बहिर्मुखी में आना खतरनाक है, पहले अंतर्मुखता की गहराई में जाए, जितना अंतर्मुखता का आनंद ले। और ये सहज नहीं होता है, यहां तो आप भट्टी में बैठे हैं भाई, मोबाइल बंद कर दो, रख दो, रख दिया दो दिन की बात है, लेकिन वहां पर भी आपका मोबाइल मौन थोड़े रह पाएगा, वहां तो कारोबार में जाएंगे, वहां पर आपके हाथ में है। आपको स्वयं ही मुख का मौन, मन का मौन और मोबाइल मौन, ये मौन रखना होगा। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए अंतर्मुखी बन करके जितनी गहराई से चिंतन करें, जब तक बेहद का वैराग्य नहीं होगा तब तक ये नहीं होता है। तो बेहद के वैराग्य के लिए चिंतन करें दिन भर में 15-20 बार, कभी भी एकांत में बैठ करके, इस दुनिया से मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, ये दुनिया गई की गई, मुझे कपड़ा चाहिए, कौन से कपड़े का शौक है, मुझे खाना चाहिए, मुझे कमरा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कहां पर मेरी बुद्धि कहां है, किस बात में रस ले रही है। अगर वो बाबा के हम बच्चे बने हैं इसी स्मृति में नहीं है, किसके बच्चे हैं ये याद नहीं है, और अतींद्रिय सुख क्या है उसका अनुभव नहीं, तो हम अभी तक क्या कर रहे हैं। इसकी गहराई में जाए, विचार करें, चिंतन करें, तो निरंतर याद का प्रयास करें। ऐसे हाथ करें, ऐसे हाथ करें, अनुभव करें कि बाबा मेरे सिर पर छत्र छाया बनकर साथ साथ चल रहे हैं, चारों ओर भयंकर अंधेरा है, लेकिन बाबा मुझे अपनी रोशनी मिली है, वो मुझे आगे रास्ता बताते जाते, वो नीचे आगे दिखाते जाते, बाबा कमाल करते, वाह बाबा, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, यही फील करें कि बाबा, बाबा से शक्तियां आ रही हैं, किरणें, और मैं आत्मा, बाबा किरणें मैं आत्मा, बाबा किरणें मैं आत्मा, बाबा किरणें मैं आत्मा। ये अभ्यास ये निरंतर करने की जरूरत है, एक एक भी करें, ये एक अभ्यास दिन भर में अगर 25 बार आपने किया, आप 25 बार करके देखें, आनंद आ जाएगा। और यही अभ्यास करें जी, हाँ जी जी बताता हूं जी जी, तो ये जो चिंतन है, मैं बाबा की छत्र छाया में बैठा हूं, भोजन बना रहे हैं, खा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, सो रहे हैं, सो रहे हैं तो भी देखें कि बाबा ने मेरे ऊपर छत्र छाया की है। और यही अभ्यास बराबर रहा तो अंत में गते अंत मते सगते बना देगा, ऐसा लगेगा कि बाबा यही तो अभ्यास कर रहे थे, अब बाबा जिसे एक लाइट आ रही है और हुक में बांध करके मुझ आत्मा को वापस अपने साथ लेकर जा रहे, ऊपर मैं जा रहा हूं, मैं आत्मा उड़ रहा हूं। यह अभ्यास निरंतर, ताकि अंत में सेकंड के पेपर में और कुछ याद नहीं करना है, कभी ये बाबा को याद करें कि पगड़ी वाले बाबा को याद करें कि किस बाबा को याद करें, या दादी में बाबा आता है, अव्यक्त बाबा को क्या याद करें, हम सब भूले होते हैं, लेकिन एक ही बात, बाबा ज्योतिर्बिंदु और किरणें और मैं आत्मा, इसमें सब आ जाते हैं। ये अभ्यास आपको करना चाहिए, मैं सलाह दे रहा हूं, राय दे रहा हूं आपको, जबरदस्ती नहीं, करना, समझना, गहराई में जानना, उसको अप्लाई करना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो निरंतर याद की दिशा में बढ़े, पांचों स्वरूपों का अभ्यास कर ले, बहुत अच्छा है, ऐसे कर लीजिए, बैठ जाइए ऐसे, जैसे मैं कहूं कर लीजिए, ये अभ्यास एक्शन से करेंगे तो आपको याद रहेगा। मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा। बहुत अच्छे, बधाई है। मैं अनादि, यहां पर मैं आत्मा, जा रहा हूं वतन में, अनादि स्वरूप, मैं ज्योति सितारा, फिर आ जाएं, मैं देव प्यारा, सतयुग में आ जाएं परमधाम से, मैं देवता हूं, बहुत प्यारा, लवफुल डेटी, फिर आ जाएं द्वापर युग में, पूज्य न्यारा, आई एम यूनिकली वर्शिप और दी, पूज्य हूं लेकिन न्यारा हूं, मूर्ति में बैठा हूं, लंबी लाइन लगी लेकिन मैं मूर्ति के अंदर विराजमान हूं और सबको, सबकी इच्छा पूर्ति कर रहा हूं, वरदान दे रहा हूं ऐसे। फिर मैं ब्राह्मण दुलारा, संगम युग में हम सब कितने दुलारे हैं, बाबा राजा बच्चा, आज राजा बच्चा, राजा बच्चा, हम सब राजे बच्चे, इतने ढेर सारे राजे बच्चों को देकर बाबा कितना खुश होता है ना, राजे बच्चे, हम सब राजे हैं ना, राजे महाराजे हैं ना, हाँ हम सब राजे महाराजे, बाबा के अति लाडे कहते बच्चे तुम्हारे पांव नीचे मिट्टी में देहभान में जाना ही नहीं चाहिए, झूले में झूलते रहो, गोद में पलते रहो, है दिल तक पर बैठे रहो, वाह 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 वाह, कितनी जगह दिया है आपने, उसमें मस्त रहो, इस तरह करें। तीसरी तपस्या है संस्कार परिवर्तन की, अपने संस्कारों को देखें कहां नाजुकपन है, शक्ति स्वरूप बन जाए, शक्ति स्वरूप, बिना शक्तिशाली बने हुए इस दुनिया में जीना मुश्किल है, क्योंकि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, थोड़ा भी कमजोर रहे माया तो पहले ही रास्ता देखती रहती है, और बाबा जब बोल देते हैं कि माया कम नहीं है, बाबा से बड़ी तीखी है, तो बच्चे घबरा जाते हैं, बाबा ये इतना तीखा क्यों बन गई है ना, इसलिए बहुत जरूरी है। आइए हम सब एक अच्छी लगन में मगन हो जाएं, संस्कार परिवर्तन में अपने स्वभाव को सरल बनाए, शीतल बनाए, उसका आधार है नम्रता, नम्र बन जाएं, बच्चे बन जाएं, अबोध बन जाएं, जैसे एक छोटा एक बच्चा हो उसको कुछ पता नहीं, बच्चे बनो और बच्चे रहो, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा, खुशियों के सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा, है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है, अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है, अरे सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा, चिंता सभी मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा, आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो, दिल हो बड़ा सबके लिए, शुभकामनाएं हो सबका भला हो, दिल हो बड़ा सबके लिए शुभकामनाएं हो, कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा। जब मैं स्टूडियो में बैठा था और कविता कृष्णमूर्ति जब एक गीत गा रही थी, तो यहां पर जब बैठे गाने के बाद तो कहती दादा दादा, वहां पता नहीं पड़े क्यों दादा मुझे दिखाई पड़ी, मैं देख दिखाई पड़ा उनको, कहते दादा ये जो गाना ये लाइन लिखी कि कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा, क्या चीज लिखी, यही तो सारा सार है, यही तो ज्ञान है, बड़ी अच्छी लाइन है, कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा, और आजाद हो पिंजरे से पंछी फिर निकल उड़ जाएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को सब सरल हो जाएगा। अंतिम तपस्या एक करनी है, वो है संपूर्ण पावन बनने की तपस्या, और संपूर्ण पावन बनने की तपस्या के लिए हम अपने दिनचर्या को इतना लक्ष्य ऊंचा बना दें, अब मुझे क्या क्या करना है, अपने दिनचर्या के लिए प्रोग्राम बनाएं, सवेरे उठते ही बाबा को अच्छी तरह से याद करके अपने दिनचर्या के लिए थिंग्स टू डू टुडे एक चार्ट बना ले, उसमें आवश्यक बातें क्या क्या अभ्यास करना है नोट कर ले, और आज पुरुषार्थ के लिए क्या करना है, पांचों स्वरूपों का अभ्यास आज मुझे 25 बार करना है, कम से कम 25 बार। मैं शांतिवन से जब भी ऊपर आता हूं गाड़ी में, कुछ और करना नहीं होता है, पीछे बैठते हैं गाड़ी चलाने वाला चला रहा है, क्या करना है, तो बस यही अभ्यास करता हूं, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, ऐसे ऐसे करता रहता हूं, वो जैसे गाना होता है ना संगीत की तरह, वो माला की तरह चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, तो ऊपर तक आते 25-30 बार कर लेता हूं, कितना अच्छा है, विदेश के भाई बहने बोलते हैं हम तो इसको 50 बार कर लेते हैं, दिन भर में 50 बार कर लो, अब सारे विकर्म खत्म, सारा समय सफल, बाबा की श्रीमत पूरी। हाँ जी, तो इस तरह से व्यर्थ से मुक्ति और समर्थ की युक्ति एकमेव मार्ग है, बाबा की मुरली में मगन हो जाओ, मुरली को प्यार करो, मुरलीधर तुमको प्यार करेगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप सबकी भट्टी बहुत अच्छी हो, तपस्वी जीवन जिए, हर रोज चारों ये अभ्यास चारों तपस्या करते रहें, आत्मभिमानी बनने की तपस्या, निरंतर याद की तपस्या, संस्कार परिवर्तन की तपस्या और संपूर्ण पावन बनने की तपस्या। बहुत बहुत बधाई, स्वागत है।